तुलसी की काव्य पद्धति का शेष अंश पृष्ठ 48। गोस्वामी जी ने यद्यपि अपनी रचना स्वांत सुखाय बताई है, पर वे कला की कृति के अर्थ और प्रभाव की प्रसरणीयता कोष्टक में कम्युनिकेबिलिटी को बहुत ही आवश्यक मानते थे। किसी रचना का वही भाव जो कवि के हृदय में था, यदि पाठक या श्रोता के हृदय तक न पहुंच सका तो ऐसी रचना कोई शोभा प्राप्त नहीं कर सकती, उसे एक प्रकार से व्यर्थ समझना चाहिए। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, निप्र किरीट तरुणी तन पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। तेसई सुकवि कवित्त बुध कहई, उपजी अनत अनत छवि लहही। आजकल सब बातें विलायती दृष्टि से देखी जाती हैं, अतः यह पूछा जा सकता है कि तुलसीदास की रचना अधिकतर स्वानुभूति निरूपण कोष्टक में सब्जेक्टिव है या बाह्यार्थ निरूपिणी कोष्टक में ऑब्जेक्टिव। रामचरितमानस के संबंध में तो यह प्रश्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह एक प्रबंध काव्य या महाकाव्य है। प्रबंध काव्य सदा बाह्यार्थ निरूपक होता है। शेष ग्रंथों में से गीतावली यद्यपि गीत काव्य है, फिर भी वह आदि से अंत तक कथा ही को लेकर चली है। उसमें या तो वस्तु व्यापार वर्णन है अथवा पात्रों के मुंह से भावव्यंजना, अतः वह भी बाह्यार्थ निरूपक ही कही जाएगी। कवितावली भी कथा प्रसंगों को लेकर ही फुटकल पद्यों की रचना की गई है। हाँ, उसके उत्तरकांड में कवि राम की दयालुता, भक्तवात्सल्यता आदि के साथ साथ अपनी दीनता, निरलंबता, कातरता इत्यादि का भी वर्णन करता है। विनय पत्रिका में अलबत्त तुलसीदास जी अपनी दशा का निवेदन करने बैठे हैं। उस ग्रंथ में वे जगह जगह अपनी प्रतीति, अपनी भावना और अपनी अनुभूति को स्पष्ट अपनी कहकर प्रकट करते हैं। जैसे क शंकर साखी जो राखी, कहो कछु तो जरी जीह गरो, अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी ही समुझी परो। ख बहुमत सुनी बहुपंथ पुराननी, जहाँ तहाँ झगरो सो, गुरु कहियो राम भजन नी को, मोहि लगत राज डगरो सो। ग को जाने को जहे रामपुर को, सुरपुर पर धाम को, तुलसी ही बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। घ नाही न नरक परत मोकह डर, यद्यपि हों अति हारो, यह बड़ी त्रास दास तुलसी प्रभु नामहु पाप न जारो। पर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी की अनुभूति ऐसी नहीं जो एकदम सबसे न्यारी हो। विनय में कली की करलता से उत्पन्न जिस व्याकुलता या कातरता का उन्होंने वर्णन किया है, वह केवल उन्हीं की ही नहीं है, समस्त लोक की है। इसी प्रकार जिस दीनता, निर्लंबता, दोषपूर्णता या पापमग्नता की भावना की उन्होंने व्यंजना की है, वह भी भक्त मात्र के हृदय की सामान्य वृत्ति है। वह और सब भक्तों की अनुभूति से अविच्छिन्न नहीं, उसमें कोई व्यक्तिगत वैलक्षण्य नहीं। यहाँ पर यह सूचित कर देना आवश्यक है कि स्वानुभूति निरूपक और बाह्यार्थ निरूपक यह भेद स्थूल दृष्टि से ही किया हुआ है। कवि अपने से बाहर के जिन वस्तुओं का वर्णन करता है, उन्हें भी वह जिस रूप में आप अनुभव करता है उसी रूप में रखता है। पृष्ठ 49, अतः वे भी उनकी स्वानुभूति ही हुई। दूसरी ओर जिसे वह स्वानुभूति कहकर प्रकट करता है, वह यदि संसार में किसी की अनुभूति से मेल नहीं खाएगी तो एक कौतुक मात्र होगी, काव्य नहीं। ऐसा काव्य और उसका कवि दोनों तमाशा देखने की चीज ठहरेंगे। फुटनोट, अर्थ यूरोप में जो कलावादी संप्रदाय कोष्ठक में एस्थेटिक्स स्कूल चला था, वह इन दो बातों में से पहली बात को ही लेकर दौड़ पड़ा था। दूसरी बात की ओर उसने ध्यान नहीं दिया था, जैसा कि पैटर के इस कथन से स्पष्ट है। जस्ट इन प्रोपोर्शन एज द राइटर्स एम कॉन्सली और अनकॉन्सली कम्स टू विथ ट्रेस्क्राइबिंग नॉट ऑफ द वर्ड, नॉट ऑफ मियर फैक्ट, बट ऑफ हिज सेंस ऑफ इट ही बिकम्स एन आर्टिस्ट। हिज वर्क फाइन आर्ट एंड गुड आर्ट इन प्रोपोर्शन टू ट्रूथ ऑफ हिज प्रेजेंटमेंट। ऑफ दैट सेंस एज इन दोज हम्बलर और प्लेनर फंक्शन ऑफ द लिटरेचर ऑल्सो ट्रूथ ट्रूथ टू द फैट देयर इज द एसेस ऑफ सच आर्टिस्टिक क्वालिटी एज दे मे हैव। फुटनोट समाप्त। जिस अनुभूति की व्यंजना को श्रोता या पाठक का हृदय अपनाकर अनुरंजित होगा, वह केवल कवि की ही नहीं रह जाएगी, श्रोता या पाठक की भी हो जाएगी। अपने हृदय को और लोगों के हृदयों से सर्वथा विलक्षण प्रकट करने वाला एक संप्रदाय यूरोप में रहा है। वहाँ कुछ दिनों नकली हृदयों के कारखाने जारी रहे, पर पीछे उन खिलौनों से लोग उब गए। पैराग्राफ चेंज। यह तो स्थिर बात है कि तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, महारामायण, श्रीमद् भागवत, हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव नाटक इत्यादि अनेक ग्रंथों से रचना की सामग्री ली है। इन ग्रंथों की बहुत सी उक्तियाँ उन्होंने ज्यों की त्यों अनुदित करके रखी हैं। जैसे वर्षा और शरद ऋतु के वर्णन बहुत कुछ भागवत के लिए हुए हैं। धनुष यज्ञ के प्रसंग में उन्होंने हनुमन्ना नाटक और प्रसन्न राघव नाटक से बहुत सहायता ली है। पर उन्होंने जो संस्कृत उक्तियाँ ली हैं, उन्हें भाषा पर अपने द्वितीय अधिकार के बल से एकदम मूल हिंदी रचना के रूप में कर डाला है। कहीं से संस्कृतपन या वाक्य विन्यास की दुरूहता नहीं आने दी है। बहुत जगह तो उन्होंने उक्ति को अधिक व्यंजक बनाकर और चमका दिया है। उदाहरण के लिए हनुमान नाटक का यह श्लोक लीजिए, या विभूति तिर दर ग्रीवे शिरस छेदे अपि संगरात दर्शना द्राम देवस्य सा विभूति विभीषणे। इसे गोस्वामी जी ने इस रूप में लिया है, जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन्ही दिए दस हमात, सोई संपदा विभीष नहीं सकुचि दीन्ही रघुनाथ। इस अनुवाद में दस माथ दिए के जोड़ में दर्शन ही ते न रखने से याचक के बिना प्रयास प्राप्त करने का जोर तो निकल गया, पर संकुचित पद लाने से दाता के असीम औदर्य की भावना से उक्ति परिपूर्ण हो गई है। संकुचित शब्द की व्यंजना यह है कि इतनी बड़ी संपत्ति भी देते समय राम को बहुत कम जान पड़ी।